यहाँ का वेदर तो एकदम लंदन जैसा है, कभी भी बारिश हो जाती। कहाँ ढूंढूं उन्हें, सारा रास्ता तो देख लिया। भाई साहब
जी,
यहाँ से कोपर गांव कितना दूर है?
बहुत दूर है वो तो यहाँ से।
ओह थैंक यू। मतलब अभी कोपर गांव तो नहीं पहुँचेंगे। कहाँ, अरे वो रहे, अमरकांत जी।
रजत बाबू तुम यहाँ?
अरे रुकिए, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। आइए अमरकांत जी, छाते के नीचे आ जाइए।
पर तुम यहाँ कैसे?
मैं कावेरी से बातें कर रहा था कि सडनली मौसम खराब हो गया, जोरों की बारिश होने लगी। और क्या, बारिश में भीगने का मन हो गया तो चला है आपको लेने।
ये क्यों नहीं कहते, मेरी चिंता में भागे भागे चले आ रहे हो। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और देखो बारिश भी कम होने लगी है।
ओह थैंक गॉड पहुंच गए। ये छाता कहाँ रखूं?
अरे छाते की चिंता छोड़ो, पहले तुम अंदर आ जाओ।
बाबा रजत जी ये लीजिए, आप लोग बदन पहुंच लीजिए, मैं जल्दी से चाय लेके आती हूँ।
वैसे कावेरी, क्या साई भी चाय के शौकीन थे? अरे मजाक कर रहा हूँ।
जानते हो जब मैं पहली बार आया था शिरडी, उस दिन भी ऐसा ही मौसम था, जोरों की बारिश हो रही थी।
पर आपने ये नहीं बताया कि जब साई शिरडी आए थे तो वो उस नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों बैठे, कहीं और क्यों नहीं, वहीं पर ध्यान क्यों लगाया उन्होंने?
पहले चाय पी लीजिए आप लोग, बातों के लिए भी पूरी शाम पड़ी है।
लो थैंक यू।
असल में साई के अचानक उस नीम की पेड़ के नीचे दिखने से सारे शिरडी वाले भी चौंक गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कारी लड़का यहाँ कहाँ से आया है और ये यहाँ क्यों बैठा है। पर अपने इस सवाल का जवाब उन्हें कुछ दिनों बाद मिला, जब अचानक गांव के एक आदमी भीमराव पर खंडोबा का संचार हुआ।
ओ, संचार मतलब पोजीशन?
हाँ, भीमराव की हरकतें देखते ही नारायण अप्पा समझ गए कि उस पर खंडोबा आया है।
अरे चोखा कोंडा बायजा, सब लोग जल्दी आओ रे, पूजा की थाली लेके सारा इंतजाम करो, खंडोबा आए हैं।
भीमराव पर खंडोबा आए हैं?
क्या बात कर रहे, चलो चलो
चलो
देखते, चलो देखते, चलो
ये को।
चल चल, अच्छा है, चल अब चल चल नीम के पेड़ के नीचे चल।
जब भीमराव के शरीर में खंडोबा का संचार हुआ तो वह सबको नीम के पेड़ के पास चलने को बोला और किलकारी मारते हुए भागा नीम के पेड़ की ओर। बस सारे लोग उनके पीछे पीछे भाग पड़े।
ये को, ये को।
नीम का पेड़, 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 नीम का
पेड़।
ये वो मौका होता है जब सारे गांव वाले खंडोबा से अपने दुख परेशानियों का हल पूछते हैं। पर नारायण अप्पा ने खंडोबा से कुछ और ही सवाल किया।
खंडोबा, ये बैरागी लड़का कौन है?
ये भला करेगा, दुख करेगा सबके, ये भला करेगा सबका।
पर खंडोबा, ये इस नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों आया?
जवाब चाहती है भाईजा, जवाब चाहती है तो खोद खोद इस धरती को।
अरे विनायक, एकनाथ, दत्ताराम, खंडोबा का आदेश है, खोदो यहाँ।
और बस लोग कुदाल फावड़े ले आए और लगे खोदने, पर अचानक किसी की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। वह धरती के नीचे पत्थर की दीवार थी।
अरे यहाँ तो कुछ बना है अंदर, खोदो और खोदो।
और नीचे खोदने पर उन्हें एक द्वार मिला, एक दरवाजा।
हे राम, कैसा सुंदर द्वार बना है।
खंडोबा, सब लीला है रे तेरी।
और जब सबने द्वार खोला तो वहाँ एक कक्ष था, बहुत शांत, शीतल, सुगंधित, दिव्य, जिसमें एक आसन सजा हुआ था और उस आसन के सामने ताजे फूल थे और कुछ दीपक जल रहे थे।
धरती के अंदर जहाँ हवा, पानी कुछ नहीं, किसने जलाए होंगे ये दिए? और ताजे फूल, चमत्कार है खंडोबा, चमत्कार है तेरा।
भाईजा, मिल गया जवाब। इस लड़के ने यहाँ धरती के अंदर इस गुफा में 12 बरस तपस्या की है तुम्हारे दुख हरने के लिए।
हमारे दुख हरने के लिए।
खूब उत्सव हुआ, ढोल नगाड़े बजे, खंडोबा का प्रसाद बटा, सब जी भर के नाचे। उसके बाद जब सब शांत हुए, तब उस लड़के यानी हमारे साई ने वो गुफा और द्वार सब बंद करवा दिए, अपनी तपस्या की कथा पर मिट्टी डलवा दी और वो रहस्य फिर से नीम की पेड़ के नीचे दब गया।
तो यू मीन टू से सबको लगता है कि खंडोबा ने उस लड़के को भेजा था जिसे आप साई कहते हैं?
हाँ, शायद। मेरा मन भी यही कहता है रजत बाबू।
पर एक बात समझ में नहीं आई अमर खान जी, जिस लड़के को कोई जानता ही नहीं था, मतलब जैसे उसका नाम वाम, उस लड़के ने अपना नाम कभी बताया नहीं था, तो फिर उसको सब साई क्यों कहने लगे?
अजब कहानी है उसकी भी रजत बाबू। असल में साई बड़े घुमक कर थे, मस्त मौला फकीर, अभी यहाँ तो अभी वहां। इधर गांव वालों की भक्ति अपने चरम पर थी कि उधर एक दिन अचानक गायब हो गए साई। बड़ी ढूंढ मची, दूर दूर तक भटक आए गांव वाले, पर साई नहीं मिले तो नहीं मिले। और शिरडी वालों को भी अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। फिर एक दिन की बात है कि औरंगाबाद स्टेट के शेठ चांद मियां अपनी घोड़ी से औरंगाबाद लौट रहे थे। रात हुई तो आराम करने के लिए उन्होंने घोड़ी को बांध दिया, पर सवेरे उठे तो घोड़ी गायब थी। चांद मियां बहुत परेशान हो गए। एक तो वो उनकी बहुत मनपसंद आरबी घोड़ी थी, और फिर उन्हें वक्त पर अपने घर औरंगाबाद पहुंचना ही था, क्योंकि वहां उनके बेटे की बारात निकलने वाली थी। कंधे पर जीन लादे परेशान से वो यहां वहां भटक रहे थे।
कहां चली गई वो घोड़ी? आज अगर घर पहुंचने में देर हो गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। या अल्लाह मदद।
और तभी अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक लड़का दिखाई दिया, करीब 20-22 का रहा होगा, फकीरों जैसे कपड़े थे बदन पे। चांद मियां अपनी परेशानी में तो थे, इसलिए वो आगे अपने रास्ते बढ़ने लगे। और तभी उन्होंने देखा कि उस लड़के ने अपनी चीलम तैयार की और आग के लिए इधर उधर देखने लगा। चांद मियां उसकी इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुराने लगे।
अजीब पागल है, यहां घास में आग ढूंढ रहा है।
पर तभी उस लड़के ने एक जगह को हाथ से टटोल कर देखा और उस पर फूंक मारी, जैसे कि वो बुझते हुए अंगारे को फिर से जलाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर चमत्कार हुआ जब उसने पास पड़ी अपनी लकड़ी से उस जगह को खोदकर जमीन में से एक अंगार निकाल लिया। चांद मियां ये देखकर भौचक्के रह गए। वो भाग के उसके पास पहुंचे और उस जमीन को देखने लगे कि आखिर उसके अंदर से अंगार निकला कैसे। उस लड़के ने चांद मियां को ऐसे जमीन पर झुके हुए देखा तो वो बोला,
अरे क्या हुआ मियां, क्या खो गया? अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहली बार देखा क्या मुझे?
ये तुमने अंगार कैसे निकाला जमीन से?
मियां, आग तो धरती के अंदर होती है ना, देखा नहीं कभी ज्वालामुखी फटते हुए? ना, शायद नहीं देखा है। अरे वो आग कहां से आती है? मिट्टी में तो आग ही आग है मियां, और तुम भी तो मिट्टी ही हो, इसीलिए आग तुम में भी है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो।
उम्र छोटी है पर बातें बड़ी रुहानी करते हो।
अरे मुझे मालिक जो सिखाता है ये बंदा वही तो बतलाता है। पर मियां ये बताओ कि ये जिन कंधे पे डाले कहाँ जा रहे हो?
क्या बताऊं भाई, मेरी घोड़ी कहीं खो गई है।
घर में छोरा और नगर में ढिंडोरा। अरे नजर उठा और वो देख सामने, वही तो नहीं तेरी घोड़ी?
चांद मियां भौचक्के होकर सामने देखते रह गए। अपने जिस घोड़ी को वो पिछले 4 घंटे से खोज रहे थे वो सामने से भागी चली आ रही थी, ठीक उनकी ही ओर। चांद मियां को यकीन तब हुआ जब उन्होंने अपनी घोड़ी की वही शानदार आवाज सुनी।
ये क्या?
और कुछ ही पलों में उनकी घोड़ी उनके पास आकर खड़ी हो गई।
ऐसा करिश्मा, आप कौन है बाबा? कहाँ रहते हैं आप?
ना साधु ना संत हूँ, ना किसी गांव का पंथ हूँ, बस इंसानियत जिसका जमीर है ये बंदा तो बस एक फकीर है। फकीर हूँ मियां, और ये फकीर की तो सारी दुनिया होती है। फकीर हूँ। मुझ फकीर को ठौर वहीं जहां सांझ हो जाए, मुझ फकीर को ठौर वहीं जहां सांझ हो जाए, टुकुर टुकुर टका करूं मैं मौला की आस लगाए।
तो बाबा मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी इल्तजा है कि आप भी मेरे साथ चले।
पगले फकीर को बांधना चाहता है। फकीर को बांधना चाहता है।
नहीं बाबा नहीं, आपने मुझे मेरी मुश्किल से निकाला, आपका आपका बड़ा एहसान है मुझ पे। बस मेरे साथ चलिए, 2 वक्त की रोटी खा लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
सर मुझे नहीं खिला, सबको खिला, जो भूखा है सबको खिला। और तुझे अच्छा लगता है तो चल, तू खुश तो मैं खुश, और मैं खुश तो मालिक खुश। चल मेरे मौला, चल चल मियां चांद मियां के साथ चल, आज तो दावत ही दावत है। चल मेरे मौला चल, आज तो चांद मियां के साथ दावत है दावत। खिला फकीर को और खिला सबको।
बस बाबा चल दिए चांद मियां के साथ औरंगाबाद की यात्रा पर।
ओह, पर अमरकांत जी कहानी तो पूरी हो गई, और आपने ये तो बताया नहीं कि उनका नाम साई कैसे पड़ा।